10 नवंबर दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदर। बर्मा की विपक्षी नेता आंग सान सूची ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सेना जनता के फैसले को मानेगी।
I find that the people are far more politicized now than they were back, not just in 1990, but much more.
देखेंगे टीपू सुल्तान नायक हैं या खलनायक।
तमिलनाडु और केरल 228 टेंपल्स युवतुगनो टीपू सुल्तान कुट्रवंता जमीन इंदा मेंटेन मारता इधर है।
चर्चा होगी अमृतसर में हुए सरबत खालसा की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। बर्मा की विपक्षी नेता आंग सान सूची ने बीबीसी से कहा है कि उन्हें रविवार को हुए आम चुनावों में 3/4 सीटें जीतने की उम्मीद है। चुनावों के नतीजे आने लगे हैं और उनका दावा सच होता दिख रहा है। अभी तक घोषित 88 सीटों में से उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 78 सीटें जीत ली हैं। चुनाव के बाद अपने पहले साक्षात्कार में सूची ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सेना नतीजों को स्वीकार करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ही म्यांमार की वास्तविक नेता होंगी। संविधान के अनुसार उनके राष्ट्रपति बनने पर प्रतिबंध है। भारत सरकार ने मंगलवार को विदेशी निवेश में उदारीकरण करते हुए 15 अहम क्षेत्रों में विदेशी निवेश के लिए ढील दी है। इनमें खनन, नागरिक उड्डयन, रक्षा और प्रसारण क्षेत्र प्रमुख हैं। सरकार ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की शक्तियां बढ़ाते हुए 50 अरब रुपए तक के प्रोजेक्टों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का अधिकार दिया है। अभी तक यह सीमा 30 अरब रुपए थी। रक्षा क्षेत्र और समाचार चैनलों में 49% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है, जबकि गैर न्यूज़ चैनलों में 100% विदेशी निवेश किया जा सकेगा। भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा,
पिछले एक महीने में भारत में व्यवसाय करना सरल हो, इसको लेकर एक देश की छवि बदली है। पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपनी रेटिंग्स में भारत का जो नंबर आता था उसका काफी सुधार किया। पिछले एक वर्ष में देश में विदेशी निवेश 40% बढ़ा है और नए जो निवेश के केंद्र हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, उनमें तो ये माना जाता है कि भारत विश्व में सबसे आगे है।
ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने यूरोपीय संघ में ब्रिटानी सदस्यता पर जनमत संग्रह से पहले संघ में सुधार की 4 प्रमुख मांगें रखी हैं। कैमरन ने कहा कि वे एक अधिक लचीला यूरोपीय संघ चाहते हैं, जिसमें राष्ट्रीय संसदों के पास अधिक शक्तियां हों और देशों के पास अधिक प्रवासी नियंत्रण हो। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ में एकल बाजार में प्रतिद्वंद्विता बढ़ाने के लिए नए आर्थिक नियमों की जरूरत है। आयरलैंड की पुलिस ने 1972 में ब्रिटानी सैनिकों के हाथों 13 लोगों की हत्या की जांच के सिलसिले में पहली गिरफ्तारी की है। ब्लडी संडे नाम से चर्चित इस हत्याकांड के 14वें पीड़ित की महीनों बाद अस्पताल में मौत हो गई थी। हिरासत में लिया गया व्यक्ति पैराशूट रेजिमेंट का पूर्व सदस्य है। ब्लडी संडे उत्तरी आयरलैंड के इतिहास में सबसे विवादित दिनों में से एक है। 5 साल पहले ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने हत्याकांड के लिए पीड़ितों से माफी मांगी थी। यूरोपीय संघ ने तुर्की पर लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मामलों में नाकाम रहने के आरोप लगाए हैं। यूरोपीय संघ में तुर्की की सदस्यता को लेकर आई सालाना रिपोर्ट में ये टिप्पणी की गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। रविवार को हुए बर्मा के ऐतिहासिक आम चुनाव के बाद पहली बार अपना साक्षात्कार देते हुए विपक्ष की नेता आंग सान सूची ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सेना चुनाव के परिणामों को स्वीकार करेगी। सूची विपक्षी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता हैं, जिसे जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अब तक घोषित हुए चुनाव परिणामों में से NLD ने तकरीबन सारी ही सीटें जीत ली हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
चुनावों के बाद बीबीसी को दिए अपने पहले साक्षात्कार में आंग सान सूची ने दावा किया है कि उनकी पार्टी तकरीबन 3/4 सीटें जीत रही है। हालांकि अभी पूरी तरह परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन अब तक घोषित परिणामों के मुताबिक उनका ये दावा सच होता दिखाई दे रहा है। अब तक घोषित किए गए 88 सीटों के चुनाव परिणामों में से एनएलडी 78 सीटें जीत चुकी है। अपने साक्षात्कार में सूची ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सेना चुनाव परिणामों को स्वीकार करेगी। सूची ने कहा है कि हालांकि चुनाव अधिकतर स्वतंत्र रहे हैं, पर ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब समय बदल चुका है और रविवार को हुए चुनाव परिणामों में सेना समर्थित सत्तारूढ़ पार्टी हेरफेर नहीं कर पाएगी।
I find that the people are far more politicized now.
मैंने देखा है कि लोगों का राजनीतिकरण और अधिक बढ़ा है, न सिर्फ 1990 के मुकाबले बल्कि 2012 में जब हमने उपचुनावों के लिए अभियान चलाया था उसके मुकाबले भी लोगों का राजनीतिकरण अब कई ज्यादा हो गया है। वे लोग अब इस बात के लिए बहुत ज्यादा सचेत हैं कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और इस सब में सूचना क्रांति ने भी काफी असर डाला है। हर कोई नेट में है और हर किसी को बताता रहता है कि क्या कुछ हो रहा है, और इसलिए उन लोगों के लिए अब चीजें बहुत कठिन हो गई हैं जो अनियमितताएं फैलाना चाहते हैं। ये थे सूची के शब्द। संविधान की ओर से सूची के राष्ट्रपति बनने में प्रतिबंध है, लेकिन सूची ने इस साक्षात्कार में फिर से दोहराया है कि वे चुनाव जीत जाने के बाद स्वाभाविक तौर पर म्यांमार की वास्तविक नेता रहेंगी। अगर हमारे सामने संविधान के अनुच्छेद 59F के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्यताएं बताई जाएंगी तो ठीक है, हम किसी और को सामने लेकर आएंगे, लेकिन इससे मुझे एक जीती हुई पार्टी के नेता के बतौर सभी निर्णय लेने से नहीं रोका जा सकेगा। ये थे सू ची के शब्द। हालांकि एनएलडी की ओर से चुनाव परिणामों के देरी से आने को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन कुछ चुनाव पर्यवेक्षकों का कहना है कि परिणाम उम्मीद से ज्यादा तेजी से सामने आ रहे हैं। विधायक दास एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शंस फाउंडेशन की ओर से एक चुनाव पर्यवेक्षक हैं, उनकी भी यही राय है। हमें लग रहा था कि सब कुछ बहुत धीमे होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी ठीक ठाक गति से हो रहा है। चुनावों से पहले लग रहा था कि ये बहुत धीमे होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अधिकतर परिणाम इस हफ्ते के अंत तक या अगले हफ्ते की शुरुआत तक आ ही जाएंगे। ये थे एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शंस फाउंडेशन की ओर से एक चुनाव पर्यवेक्षक विधायक दास के शब्द। संविधान के मुताबिक सेना के पास संसद की 25% सीटें सुरक्षित हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार बनाने के लिए विपक्षी पार्टी एनएलडी को बड़े बहुमत की जरूरत होगी। अगर एनएलडी की चुनाव में जीत भी हो जाती है तो भी नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूची राष्ट्रपति नहीं बन सकती हैं, क्योंकि संवैधानिक तौर पर उनके राष्ट्रपति बनने पर रोक लगी हुई है। म्यांमार के संविधान के मुताबिक जिस नागरिक के बच्चे विदेश में पैदा हुए हों वो सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ सकता है। सूची के दोनों बेटों के पास ब्रितानी पासपोर्ट है और उनके पति एक विदेशी शिक्षक थे। लोकतंत्र के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाली सूची 15 सालों से ज्यादा समय के लिए नजरबंद रही थी।
लंदन के वेम्बली स्टेडियम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन बाद शुरू होने वाली यात्रा की तैयारियां कई महीनों से चल रही हैं। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव वेम्बली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के प्रमुख विजय चौथाईवाले से हुई, जो वेम्बली में इंतजामों का खुद जायजा ले रहे थे।
इस वक्त हम लंदन के वेम्बली स्टेडियम में मौजूद हैं। मेरे पीछे फुटबॉल की वो ग्राउंड है जहां पर तैयारियां हो रही हैं। नरेंद्र मोदी फ्राइडे को यहां पर हजारों लोगों को एड्रेस करने वाले हैं, और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विजय चौथाईवाला मौजूद हैं, जो बीजेपी के फॉरेन अफेयर्स सेल के इंचार्ज हैं। डॉक्टर चौथाईवाला, खास तौर पर आप आए हैं इस इवेंट के लिए, क्या इतना बड़ा जो इवेंट हो रहा है इसको लेकर कितना एक्साइटमेंट है बीजेपी में और कितनी उम्मीदें हैं इससे?
एक्साइटमेंट बहुत है, नॉट ओनली बीजेपी लेकिन पूरे एनआरआई कम्युनिटी में, विश्वभर में जो है वो सब में एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है मोदी जी का कम्युनिटी इवेंट सब जगह, वहाँ जहाँ जहाँ जब वो जाते हैं वहाँ होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, इसलिए एक्साइटमेंट होना स्वाभाविक है।
क्यों इतने बड़े इवेंट की क्या जरूरत थी, मतलब क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या है?
क्योंकि भारतीयों की यहाँ संख्या भी ज्यादा है, बहुत सालों से, बहुत जनरेशन से भारतीय यहाँ रहते हैं, और मोदी जी के बारे में उनके मन में बहुत आस्था है, प्रेम है, उत्साह है, और उनके डिमांड से ये हुआ है, हमने ये कार्यक्रम थोपा नहीं है किसी के ऊपर, उन्होंने ही कहा कि इतना बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए।
तो जितने हजारों लोग मैं सुन रहा हूँ इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोग्राम के पीछे, क्या सब लोग स्वेच्छा से वॉलंटियर्स हैं या क्या कैसे
सब,
इसको प्लान करते हैं?
बड़ा इवेंट सब स्वेच्छा से, सब वॉलंटियर्स है। हम इसके लिए 3 महीने 3.5 महीने से प्लान कर रहे हैं। करीब 250-300 वॉलंटियर्स पिछले 1.5-2 महीने से दिन रात अपना जॉब ये करते हुए काम कर रहे हैं और आप उसका पूरा सक्सेस 13 तारीख को देखेंगे।
ऐसा सुनने में आया है कि जो स्टेडियम के लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि साहब यहाँ पर एक बहुत अहम फुटबॉल मैच भी होने वाला है, तो इसलिए पिच जो है उसको खास तौर से कोई नुकसान ना हो, तो क्या आप लोग कदम ले रहे हैं उसके लिए?
नहीं, हमने वो पूरी चिंता की है कि पिच के आजू बाजू कुछ हो नहीं, इसलिए वो पूरी तैयारी है, उसके लिए बहुत कुछ चिंता का विषय नहीं है।
ये भी बताया जा रहा है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन यहाँ पर होंगे,
मैंने भी ऐसा सुना है, अगर वो आते हैं तो उनका बहुत स्वागत है, देखते हैं, मुझे पता नहीं है, कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है।
एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब, कि जो बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो रही है, थोड़ा सा अगर जीतते तो शायद और
ऐसा है, जब प्रधानमंत्री भारत के बाहर जाते हैं वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर होते नहीं है, इसलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उसका इस विजिट पे कोई भी परिणाम होने की कुछ भी संभावना नहीं है।
ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के प्रमुख विजय चौथाई वाले से बात कर रहे थे नितिन श्रीवास्तव। गुरु ग्रंथ साहब की लगातार हो रही बेअदबी, सिरसा के बाबा राम रहीम को माफी देने और सिख पंथ से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए आज अमृतसर में सरबत खालसा का आयोजन किया गया। सरबत खालसा को लेकर कोई टकराव ना हो, इसके लिए पंजाब पुलिस ने अमृतसर को पुलिस छावनी में बदल दिया है। आइए सीधे चलते हैं अमृतसर रविंदर सिंह रोबिन के पास। रविंदर, इससे पहले कि आज के माहौल के बारे में बात की जाए, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये सरबत खालसा है क्या?
जी, जब भी एक ये ऐतिहासिक तौर पर 10वें गुरु सिखों के श्री गुरु गोविंद सिंह ने 1708 में शुरू की थी ये प्रथा, कि जब भी सिख धर्म पर इस तरह के कोई घोर संकट के बादल आ जाएं जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या उनके लीडर्स कुछ कर ना पाए, तो एक सरबत खालसा बुलाया जाने का प्रावधान रखा गया, जिसमें सिखों की जितनी भी बॉडीज हैं, रिलीजियस या दूसरी पॉलिटिकल जो संस्थाएं हैं उनके नाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदे हैं, उनको बुलाया जाए और उनसे विचार कर एक प्रोग्राम तैयार किया जाए, कम्युनिटी के लिए एक रास्ता बनाया जाए, उसको एक सरबत खालसे का नाम दिया गया।
तो ये बताएं, आज इस जो सरबत खालसा हुआ, कितने लोग मौजूद थे, कैसा माहौल था, वर्णन करिए पूरा।
देखिए, जो सरबत खालसा इस बार बुलाया गया उसमें एक तो ये देखिए कि जो सरबत खालसा जो बुलाने के लिए भी एक कंफ्यूजन क्रिएट की गई कि सरबत खालसा बुला कौन सकता है, उसमें वैसे तो प्रावधान ये ऐसा कहा जाता है कि ये श्री अकाल तख्त साहिब जो सिखों की सुप्रीम कोर्ट है अमृतसर में, उसको ये अख्तियार दिए गए हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं हो पाया। उसका कारण ये था कि अकाल तख्त के जथेदार और बाकी जो जथेदारों ने जो पिछले दिनों में फैसला लिया था राम रहीम जो डेरा सच्चा सौदा के चीफ हैं उनको माफी देने और फिर माफी वापस लेने का, और उसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो लगातार बेअदबी होती रही पिछले दिनों में उसमें कोई पुख्ते रिजल्ट सामने नहीं आए, तो ऐसा लगा उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो रेडिकल्स भी हैं और मॉडरेट भी हैं, उनको ऐसे लगा कि अब सिखों के जो नुमाइंदे हैं जो अकाल तख्त पर बैठे हैं या SGPC के प्रधान हैं या चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो कुछ जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, लगभग आज 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने संगठनों ने मिलके सरबत खालसा का आयोजन किया। सरबत खालसा के आयोजन के लिए उन्होंने जगह तो मांगी थी हरिमंदर साहब परिसर के में ही, लेकिन वो ना देने के कारण इन्होंने अमृतसर से लगभग 20 किलोमीटर दूर रखी एक छोटे से गांव में जिसका नाम चब्बा है।
तो ये बताएं जी, आज क्या क्या प्रस्ताव पास हुए वहां पर?
जी, वैसे तो उनकी उम्मीद से ज्यादा वहां पे गैदरिंग, वो बताते हैं जो ऑर्गेनाइजर हैं, और वहां पे जो फैसले लिए गए उसमें सबसे बड़े फैसले थे जो जत्थों जो अकाल तख्त के जथेदार हैं और बाकी जथेदार 3 हैं उनको हटाने का फैसला लिया गया। ज्ञानी गुरबचन सिंह जो अकाल तख्त के जथेदार हैं उनकी जगह पे जगतार सिंह हवारा को अकाल तख्त का जथेदार मनोनीत किया गया। जगतार सिंह हवारा, मैं आपको बताता चलूं, इनके ऊपर ये अक्यूज हैं, आरोपी हैं, जो पंजाब के तब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह की हत्या को लेकर और इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। और उसके अलावा बाकी कुछ लोगों को लगाया गया, क्योंकि वो जेल में है तो कार्यकारी एक ध्यान सिंह मंड जी हैं, उनको बनाया गया। इसके अलावा ये कहा गया कि 1986 में जो था उसमें जो फैसले लिए गए वो हम पूरी तरह मनाएंगे आगे जाके। अब इस बात को लेके एक बड़ा बिटवीन द लाइंस वाली बात उन्होंने की कि जो 1986 में जब सरबत खालसा हुआ था तब खालिस्तान की मांग की गई थी, तो इस बार उन्होंने स्टेज पर जरूर खालिस्तान का नाम ले लिया पर ये कह दिया कि 1986 वाले मुद्दे भी हम लेंगे और उसको उन्होंने पूरा मनाएंगे। बादल को जो प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल को दोषी माना है कि पिछले दिनों में जितनी घटनाएं हुई है गुरु ग्रंथ साहब की भेद भी की उसको वो जो दोषियों को वो पकड़ नहीं पाए या जस्टिस नहीं दे पाए, इस तरह की बातें की गई। और जो अवार्ड दिए गए हैं अकाल तख्त की तरफ से अब तक प्रकाश सिंह बादल और अवतार सिंह मक्कड़ को वो वापस लेने की बात की, कुल मिला के ये एक रेडिकल इसमें काफी यूनाइट नजर आए आज की गैदरिंग में।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंदर सिंह रॉबिन। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद से पार्टी में विरोध का बिगुल बज उठा है। राज्य के बेगूसराय क्षेत्र से सांसद भोला सिंह ने कहा है कि बिहार की हार के लिए पार्टी नेतृत्व जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव में बीजेपी हारी नहीं है बल्कि उसने आत्महत्या की है। भारतीय जनता पार्टी में उभर रहे असंतोष पर पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक विवादित बयान दिया था कि अगर बिहार में महागठबंधन की जीत होती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन चुनाव में एनडीए की करारी हार के बाद प्रदेश भाजपा नेताओं के बयानों का धमाका हर रोज हो रहा है। कुछ बड़े भाजपा नेताओं की नाराजगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना के रूप में सामने आ रही है। कल जहां सांसद हुकुमदेव नारायण यादव और शत्रुघ्न सिन्हा की नाराजगी सामने आई थी तो आज बेगूसराय से भाजपा सांसद भोला सिंह ने नेतृत्व की आलोचना की।
और बिहार में भाजपा का कोई स्थापित नेतृत्व नहीं है। केंद्र ने भी अपने तौर तरीकों से बिहार को यही संदेश दिया है, ये भाजपा की हार नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली।
वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने आज न केवल सांसद भोला सिंह के बयान का समर्थन किया बल्कि खुद भी एक बार फिर आलोचक की भूमिका में दिखे।
जाहिर कमियां तो रही हैं, खामियां रही हैं, तभी तो इस तरह से बुरी तरह से हार हुई हमारी कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतने लोगों को वहां डालने के बाद, इतने लोगों को महीनों महीनों वहां बैठाने के बाद, तथा कथित बाहरी बाहरी मतलब हिंदुस्तान एक है, वैसे तो कोई बाहरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से परसेप्शन दिया कि बाहरी यानी बाहर से लोगों को बुला बुला कर कि झारखंड से कि छत्तीसगढ़ से कि, और उसके बाद ये परिणाम आया तो जरूर दुख का विषय है। आज भोला बाबू बहुत ही विद्वान आदमी है, भोला बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं, जो हमारे एमपी भी हैं और हम उनकी बहुत कदर करते हैं, आज उन्होंने भी कहा।
हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इन आलोचनाओं को गलत बताते हुए कहा है कि चुनाव में प्रदेश नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व का पूरा साथ मिला।
केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा सहयोग किया, उम्मीद से ज्यादा सहयोग किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सारे प्रभारी, सब लोग पूरी ताकत से लगे रहे, ये तो सहयोग है। और जहां तक सवाल है कि ये चुनाव में हार का, तो हार में लालू जी नीतीश जी का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ और वो इकट्ठा हुआ और हमारा जो वोट प्रतिशत है वो ज्यादा बढ़ा नहीं, इसलिए चुनाव में हार गया, इसका और कोई कारण नहीं हो सकता।
जानकारों का मानना है कि जैसी करारी हार भाजपा को बिहार चुनाव में मिली है उसके बाद भाजपा के अंदर ऐसी नाराजगी उभरना हैरान करने वाला नहीं है। सवाल यह है कि भाजपा इससे निपटती कैसे है। वह ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर कड़ा संदेश देती है या फिर हार के बाद उठे तूफान के गुजर जाने का इंतजार करती है। मनीष शांडिल, BBC पटना।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। एक पद एक पेंशन की मांग कर रहे सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के विरोध में मंगलवार से अपने मेडल वापस करने का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया है। देश भर के विभिन्न जिलों से मिल रही खबरों के अनुसार पूर्व सैनिकों ने जिले के मुख्यालयों पर अपने युद्ध व अन्य वीरता मेडलों को लौटा दिया है। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगाए गए कैंप में कुल मिलाकर 10,000 के करीब मेडल जमा किए गए। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रवि।
जब तक ये फौज की नौकरी में थे, जोश और उमंग से भरपूर थे। भारत को भी अपने फौजियों पर हमेशा गर्व रहा है, मगर पिछले 4 महीनों से आंदोलन कर रहे इन पूर्व सैनिकों के हौसले अब पस्त होने लगे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन का केंद्र मंगलवार को दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। बड़ी तादाद में सेवानिवृत्त अधिकारियों ने एक एक कर अपने मेडल लौटाने के लिए लाइन लगा दी।
उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।
इन्हीं में से एक हैं जनरल चड्ढा, जिन्होंने 36 सालों तक फौज में नौकरी की है। आज उन्होंने सुबह से ही अपने मेडल संजोना शुरू कर दिया।
डिले फॉर द ओआरओपी इज शेमफुल ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे हैव एक्सेप्टेड द ओआरओपी।
जनरल चड्ढा कह रहे थे कि ओआरओपी के लागू होने में इतना विलंब सरकार के लिए शर्मनाक है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ अफसरशाही की वजह से हो रहा है। इतने सालों में मुझे जितने भी मेडल मिले हैं, मैं उन सबको अपने साथ लेकर आया हूँ। आज मैं इन सब को भारी मन से लौटा रहा हूँ। मेडल लौटाने वालों में से एक हैं कर्नल अनिल कौल भी, जिनका एक हाथ और एक आंख युद्ध के दौरान गोली लगने से खराब हो गई।
जो नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है, जो नोटिफिकेशन के आदेश है, उसने हमारे हिसाब से जो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा है उसको गाड़ दिया है, खत्म कर दिया है। इसके बाद वन रैंक वन पेंशन का मायने ही नहीं रहा, तो लिहाजा हम इनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुके हैं। और रिजेक्ट करने के हमको इतना गुस्सा है, इतना नाराजगी है कि हमारे को जो बताया गया था उसके बिल्कुल खिलाफ यू टर्न लेके इन्होंने उल्टा काम किया है। तो और कोई हमारे पास देने को कुछ है नहीं, हमने अब खुद ही देख रहे हैं, आंख भी हाथ भी ये सब लड़ाई में चला गया और कोई देने को नहीं है, ये तकमे ही है, तकमे वापस कर।
पूर्व सैनिकों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रिटायर्ड जनरल सदबीर का कहना है कि सरकार की अधिसूचना के बाद सभी पूर्व सैनिक ठगा महसूस कर रहे हैं।
ये स्टेटमेंट हमें मंजूर नहीं है जो रक्षा मंत्री ने दिया है, क्योंकि वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है। वन रैंक वन पेंशन जो पार्लियामेंट ने सैंक्शन किया है, जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है, वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है। इनफैक्ट ये वन रैंक वन पेंशन की डेफिनेशन को टोटली बर्बाद करता है। हमारे को बहुत हैवी हार्ट से हम इसको वापस करते हैं। जब हमारा इस देश इस संसार से चले जाते हैं तो ये हमारी बॉडी के ऊपर रखा जाता है एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द सोल्जर। हम इसको वापस कर रहे हैं अपना एंग्विश, अपना एंगर एक्सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को कि आपने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है।
पूर्व सैनिकों का आरोप है कि सरकार ने ओआरओपी में कई पेंच फंसा दिए हैं जो पूरी प्रक्रिया को काफी जटिल बना देते हैं, क्योंकि किसी कनिष्ठ अधिकारी को उसके सीनियर से ज्यादा पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि पूर्व सैनिकों की सारी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है।
हर एक को डिमांड करने का अधिकार रहता है, लेकिन जितना मैक्सिमम उसका मेन जो डिमांड था वो हर एक को एक रैंक में एक पेंशन, वो हमने पूरा कर, हर एक चीज मांगते हैं वही अगर सेटिस्फाई होने लगी तो कभी खत्म नहीं होगा और कोई तो और कुछ मांगेगा।
सरकार के रुख ने अब ओआरओपी के मामले को और पेचीदा बना दिया है, मगर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों ने इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार के साथ दो दो हाथ करने का मन बना लिया है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
अठारहवीं सदी में मैसूर रियासत के सुल्तान टीपू को इतिहास के पन्नों में एक नायक की तरह माना जाता रहा है, लेकिन इधर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ओर से टीपू की जयंती मनाने के फैसले के बाद इस बात पर विवाद खड़ा हो गया है कि टीपू सुल्तान एक धर्मनिरपेक्ष बादशाह थे या धार्मिक कट्टर बादशाह। आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों ने इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि टीपू ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। हालांकि ऐसे कई हिंदू मंदिर और मठ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें टीपू ने संरक्षण दिया। ये पूरी बहस आकर कहां खड़ी हुई है, बता रहे हैं इमरान कुरैशी इस रिपोर्ट में।
मैसूर रियासत के सुल्तान टीपू को गुजरे दो शताब्दियां बीत गई हैं। वे हिंदुस्तान के उन बादशाहों में शुमार हैं जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान दी, लेकिन आज भी उन्हें लेकर विवाद चल रहा है। आरएसएस और उनके सहयोगी संस्थाओं का मानना है कि टीपू सुल्तान ने मंदिरों को तबाह किया और कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिले में चर्चों को भी बर्बाद किया। आरएसएस के कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोऑर्डिनेटर वी नागराज कहते हैं, पुराना मैसूर राज्य कोडगु, चित्रदुर्गा और दक्षिण कन्नड़ जिलों में उन्होंने बहुत अत्याचार किए। उन्होंने मंदिरों और चर्चों को भी बर्बाद करा और इस्लाम को परिवर्तिता की। उनके बारे में लोगों में अच्छी याददाश्त नहीं है, इसीलिए उनकी सालगिरह मनाने पर लोग खुश नहीं हैं। ये थे वी नागराज के शब्द। टीसी गोड़ा एक शोधकर्ता हैं, उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों के ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन किया है। वे बताते हैं,
तमिलनाडु और केरला 228 टेंपल्स युवतगुनो।
टीपू सुल्तान तमिलनाडु और केरला में करीब 228 मंदिरों की देखभाल की है। ये जानकारी सरकारी आदेशों के मुताबिक केरला के वायनाड जिले के दफ्तर में है। जो कुछ संघ परिवार के लोग कहते हैं वो सरासर झूठ है। श्रृंगेरी मठ, मेलकोटे की मठ और बहुत सारी मंदिरों को उन्होंने दुश्मनों से बचाया और सहायता भी दी है। ये थे टीसी गौड़ा के शब्द। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के प्रोफेसर नरेंद्र पानी इस मसले को अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि 18वीं ईस्वी में लूट और बलात्कार हर जंग में होता था। बेंगलुरु की तीसरी जंग में भी ब्रिटिश फौजियों ने यही किया था, तो यह ठीक नहीं है कि हम 21वीं सदी की मानसिकता से 18वीं सदी को देखें। नरेंद्र पानी ये भी कहते हैं, जहां भी टीपू सुल्तान का कंट्रोल था वहां उन्होंने मंदिर, चर्च और मस्जिदों को सहायता दी थी। लेकिन दरअसल बात यह है कि अगर आज की तारीख में हमें देखना हो तो हम टीपू के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को याद करेंगे या जो यहाँ रियासतों के बीच आपसी लड़ाई थी उसके बारे में बात करेंगे। जाहिर है कि ये लोग अपने लोगों के बीच की लड़ाई के बारे में ही फोकस कर रहे हैं। ये थे प्रोफेसर नरेंद्र पानी के शब्द। टीपू सुल्तान का नाम इतिहास में गहरे से दर्ज है। ये बात अलग है कि ये अब एक विवादास्पद नाम हो गया है, लेकिन उनके बारे में ये भी एक दिलचस्प बात है कि पिछले साल लंदन के मशहूर क्रिस्टीज ने टीपू सुल्तान की एक सोने की अंगूठी की नीलामी की थी। उस अंगूठी पर लिखा था राम का नाम, एक मुस्लिम सुल्तान की अंगूठी पर लिखा राम का नाम टीपू सुल्तान के नजरिए की तरफ इशारा करती है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
और अब एक नजर डालते हैं खेल समाचारों पर। आदेश कुमार मेरे सामने बैठे हुए हैं, बताइए आदेश।
जी रेहान, कल देर रात श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच पल्लिकल में पहला 2020 मुकाबला समाप्त हुआ, जहां मेजबान श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 30 रन से बांट दी। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक रत्न दिलशान के 56 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 215 रन बनाए। और रेहान, आपको ताज्जुब होकर कि वेस्टइंडीज के 7 गेंदबाजों ने 20 ओवर किए, और इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम 19.5 ओवर में ही 185 रन पर सिमट गई। कल भारत के लिए चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि साइना नेहवाल महिला एकल वर्ग में और के श्रीकांत पुरुष एकल वर्ग में पिछले विजेता रहे हैं। दोनों की फिटनेस पर थोड़े से सवाल हैं। वैसे साइना नेहवाल कल चीन की सुन यू और के श्रीकांत हांगकांग के युन हू के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, और इनके अलावा महिला युगल वर्ग में ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा पर भी सबकी नजर रहेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदेश। और चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बर्मा की विपक्षी नेता आंग सान सूची ने बीबीसी से कहा है कि उन्हें रविवार को हुए आम चुनावों में 3/4 सीट जीतने की उम्मीद है। भारत सरकार ने मंगलवार को विदेशी निवेश में उदारीकरण करते हुए 15 अहम क्षेत्रों में विदेशी निवेश के लिए ढील दी है। ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने यूरोपीय संघ में ब्रिटानी सदस्यता पर जनमत संग्रह से पहले संघ में सुधार की 4 प्रमुख मांगें रखी हैं। आयरलैंड की पुलिस ने 1972 में ब्रिटानी सैनिकों के हाथों 13 लोगों की हत्या की जांच के सिलसिले में पहली गिरफ्तारी की है। यूरोपीय संघ ने तुर्की पर लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मामले में नाकाम रहने के आरोप लगाए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था हेमंत कुशवाहा ने। रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।